ये दुनिया सैकड़ों कहानियों का मजमुआ है। हर शख्स में एक कहानी है और उस कहानी में कई कहानियां। मानो कहानियों का बड़ा सा ढेर हो जिसमें कुछ कहानियां अनसुनी रह जाती हैं। स्टोरी टेलिंग की जब बात हो रही है, aren't we all crazy about stories? बचपन में चाहे वो नानी अम्मी का कहानियां सुनाना हो या कार्टून्स में मजेदार कहानियों का लुत्फ उठाना हो, चाहे वो फिल्म्स हो, रेडियो शोज हो या दोस्तों के साथ गप्पे मारना क्यों ना हो, उनमें एक कहानी जरूर होती है और उसी से हमारी दिलचस्पी कायम रहती है। आदाब, मैं हूँ फौकिया वाजिद और सोच कास्ट पे आपके सामने हाजिर है उर्दू पॉडकास्ट आओ सुने, जिसमें हम आपको कुछ दिलकश कहानियों से रूबरू करवाएंगे। कहानी का नाम है मेला घूमनी, जिसको लिखा है अली अब्बास हुसैनी ने। कानों की सुनी नहीं कहता, आंखों की देखी कहता हूं। किसी विदेशी वाकये का बयान नहीं, अपने ही देश की दास्तान है। गांव घर की बात है, झूठ सच का इल्जाम जिसके सर पर चाहे रखिए, मुझे कहानी कहना है और आपको सुनना। दो भाई थे, चुन्नू मुन्नू नाम, कहलाते थे पठान, मगर नानीहाल जिला है टोली में था और दादीहाल सैयदवाड़े में। माँ प्रजा की तरह मीर साहब के हां काम करने आई थी। उनके छोटे भाई साहब ने उससे कुछ और भी काम लिए और नतीजे में हाथ आए चुन्नू मुन्नू। वो तो यादगार छोड़कर जन्नत से धारे और खामियाजा भुगता बड़े मीर साहब ने। उन्होंने बी जुलाहन को एक कच्चा मकान अता किया और चुन्नू मुन्नू की परवरिश के लिए कुछ रुपए दिए। वो दोनों पले और बड़े अच्छे हाथ पांव निकाले। चुन्नू जरा संजीदा था, होश संभालते ही मीर साहब के कारिंदों में मुलाजिम हुआ और हमसिन मीर साहिबान का मुसाहिब बना। मुन्नू ला उबाली था, अहीरों के साथ अखाड़ों में कुश्ती लड़ा करता और नाम के लिए खेती बाड़ी करने लगा। लेकिन दोनों जवान होते ही आसाब का शिकार हुए। खून की गर्मियां विरासत और माहौल से मिली थी। दोनों जिंसियात के मैदान में बड़े बड़े मार के सर करने लगे। शुदा शुदा मीर साहब के कानों तक उनके कारनामों की दास्तानें पहुंची। उन्होंने चुन्नू को उसी तरह की एक लड़की से ब्याह करके बांध दिया, मगर मुन्नू छुटे सांड की तरह मुख्तलिफ खेत चरता रहा। उसकी हंगामा आराइयों का गलगला दूर तक पहुंचा। बिल आखिर मीर साहब के पास अहीर टोली, चमार टोली, जोलाहे टोली और हर समत और हर मोहल्ले से फरियाद की सदाएं पहुंचने लगी। उन्होंने आजिज आकर एक दिन उसकी माँ को बुलवा भेजा। जब वो घूंघट लगाए लजाती सहमती उनकी बीवी के पलंग के पास जमीन पर आकर बैठी, तो मीर साहब ने मुन्नू की शिकायत की और कहा, इस लड़के को रोको वरना हाथ पांव टूटेंगे। उसने आहिस्ता से कहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही चुन्नू की तरह उसे भी किसी नान से लगा दीजिए। मीर साहब बड़ी सोच में पड़ गए। ये नई किस्म का कलमी पौधा किसी मुनासिब ही थाले में लगाया जा सकता था। हर जमीन तो इसको कबूल नहीं कर सकती और वहां उसके कारनामों की शोहरत ने हर जगह शोरियत पैदा कर दी थी। वो जनान खाने से सोचते हुए बाहर चले आए और बराबर सोचते ही रहे। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों दूरी के मेले से वापस होने वालों के साथ एक नामालूम कबीले की औरत गांव में आई और एक दिन मीर साहिब के हां नौकरी की तलाश के बहाने पहुंची। सैयदानी बी ने सूरत शक्ल देखते ही समझ लिया कि वो उनके घर में मुलाजिमा की हैसियत से रहने वाली औरत नहीं। पूछने गचने से ये भी मालूम कर लिया कि वो गांव के दर्जी के साथ मेले से आई है और उसके हां टिकी भी है। सैयदानी बी उस दर्जी के हरकत सुन चुकी थी। जब से उसकी दर्जन सिधारी थी, उसने मेलों से नई नई औरतों का लाना और गांव की निस्वानी आबादी में इजाफा करना अपना वतीरा बना लिया था। फिर भी सैदानी बी के रईसाना मिजाज ने साफ साफ इनकार की इजाजत न दी। उन्होंने कहा, अच्छा घर में रहो और काम करो, दो चार दिन में तुम्हारे लिए कोई बंदोबस्त करूंगी। उधर मर्दाने में मीन साहब को उनके हम जलीसों ने नौ वारिद की खबर दी। एक साहब ने जो जरा जरीफ तबीयत भी थे उसकी तारीफ यूं बयां की, राविया ने सादिक का कौल है कि असल उसकी बंजारन है, वो बंजारन से ठकुराइन बनी, ठकुराइन से पठानी, पठानी से कुबड़न, कुबड़न से दर्जन और अब दर्जन से सैदानी बनने के इरादे रखती है। एक साहब ने पूछा, और उसके बाद? वो दोनों शाने उठाकर बोले, खुदा ही जाने, शायद इसके बाद फरिश्तों से आंख लड़ाएगी। मीर साहब जब घर आए तो बीवी ने उन मोहतरमा की खबर दी। बहुत जज्बिज हुए, इस सीरत की औरत और शर्फा के घर में। वो नेक कदम खुद भी किसी काम के सिलसिले में सामने आए। मीर साहब बल खाने लगे, नौकरी करने आई थी, अगर इनकार करते और घर से निकाल देते हैं तो उसे मासियत की तरफ ढकेल देते हैं। पेट के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करते हैं, अगर अपने हाँ बार देते हैं तो घर में माशाल्लाह कई छोटे मीर साहिबान हैं, कहीं चुन्नू मुन्नू की नस्ल और न बढ़े। इन नामों की याद से जहन में एक ख्याल पैदा हुआ और वो मुस्कुराकर बीवी से सरगोशी करने लगे। फिर मुन्नू की माँ को बुलवाकर उन्होंने उसे नादिर शाही हुक्म दे दिया। हमने मुन्नू की निस्बत तय कर दी, उससे कह दो कल उसका अक्द होगा। बेचारी जुलाहन को चू चरा करने की मजाल न थी। वो बहुत अच्छा कहके होने वाली बहू पर एक नजर डालने चली गई। वो भी रिश्ते से बिल्कुल बेखबर थी, इसलिए बहुत खुल के बातें हुई। जुलाहन उसके तौर तरीके से ज्यादा मुतमईन न हुई, लेकिन जानती थी मीर साहब की खुशी इसी में है, इख्तलाफ का यारा नहीं। रहने का ठिकाना उन्हीं का दिया है, चुन्नू की नौकरी उन्हीं की अता करदा है और मुन्नू की जोत में खेत भी खुद उन्हीं के हैं। फिर लालच भी था, अपनी खुशी से शादी करेंगे तो सारा खर्च भी खुद ही उठाएंगे। गरज घर आई और रात को मुन्नू को मीर साहब का फैसला सुना दिया। वो उसे दर्जी ही के घर भावच के हैसियत से देखकर पसंद कर चुका था, जल्दी से राजी हो गया। दूसरे दिन मौलवी साहब बुलाए गए, मुन्नू को नई धोती नया कुर्ता मीर साहब ने पहनवाया, दुल्हन को शहाना जोड़ा और चंद चांदी के जेवरात उनकी बीवी ने पहनाए और अक़द हो गया। फिर मीर साहब और उनकी बीवी ने रूनुमाई के नाम से 10 रुपए मुन्नू की माँ को दिए और दुल्हन को उसके हाँ रुखसत कर दिया। दिन बीतते गए, महीने हुए, एक साल होने को आया, मगर मुन्नू और उसकी दुल्हन की कोई शिकायत सुनने में न आई। मीर साहब को इत्मीनान सा हो चला कि नुस्खा कारगर हुआ और आसाब के दो बीमार एक ही चुटकुले में अच्छे हो गए कि दफतन एक दिन बी जुलाहन रोती बिसूरती पहुंची। मालूम हुआ मुन्नू ने मारा है। पूछगछ से खुला कि 6 महीने से उसे नशे का शौक हुआ और जिस तरह वो नशा बीवी पर उतारता है उसी तरह गुस्सा माँ पर। कल रात में तो उसने मारा ही नहीं बल्कि उसे एक कोठरी में बेआबोदाना बंद रखा। अब छुट्टी है तो फरियाद लेकर आई है। मीर साहब के इस सवाल पर कि पहले ही क्यों न बताया कि फौरी तदारुक से शायद बुरी आदत न पड़ने पाती, जुलाहन सिवाय ममता के और क्या जवाब दे सकती थी। उन्होंने हुक्म दिया, आज से यहीं रहो, घर जाने की जरूरत नहीं। मगर मीर साहब को मुन्नू की फिक्र हो गई। खून गंदी नाली में बहकर ना तो बदल जाता है और ना फटकर सफेद हो जाता है, इसलिए उसे बुला भेजा और हद से ज्यादा खफा हुए और यहाँ तक कह दिया कि अगर फिर सुना कि तूने ताड़ी पी तो दरख से बंधवा कर इतना पिटवाऊंगा कि चमड़ा धर जाएगा। साथ ही पारसी के पास मखसूस कारिंदा भेजकर कहला भेजा कि अब अगर चुन्नू को एक कतरा भी पीने को मिला तो ताड़ी खाना उठवा फेंकूंगा। गरज मुन्नू की पूरी तौर पर बंदिश कर दी गई और ताड़ी बंद हो गई। नशे का इंजेक्शन ममनू करार दे दिया गया, मगर जोंक अपना काम करती रही और ताड़ी बंद होने के 6 माह बाद वो आंखें मांगने लगा। बिल्कुल जर्द सूखा हुआ आम बन गया और खांसी बुखार का शिकार हुआ। जब मीर साहब को खबर मिली कि आयादत के बहाने यारों की नशिस्तें होने लगीं और बहू ने नैनों के बाण चलाना शुरू कर दिए, तो उन्होंने बी जुलाहन को कुछ रुपए देकर घर भेजा और बेटे का इलाज और बहू की निगरानी की ताकीद की। लेकिन ये निगरानी वहां इसी तरह नागवार गुजरी जिस तरह चोरों को पुलिस की निगरानी खटकती है। 2-4 दिन ही में अंगेज करने के बाद जबान की छुरी तेज होने लगी। सास भला किससे कम थी, इन्होंने कल्ला बकल्ला जवाब देना शुरू कर दिया। एक दिन तो हाथापाई तक पहुंची। जवानी और बुढ़ापे का क्या मुकाबला था। बहू सास के सीने पर सवार हो गई। मुन्नू पलंग से झपट कर उठा और लड़खड़ाता हुआ माँ को बचाने पहुंचा। बीवी ने सीने पर वो लात दी कि वो हाय कर वहीं ढेर हो गया। दोनों लड़ना भूलकर उसकी तीमारदारी में मशगूल रहीं। लेकिन बलगम के साथ थोड़ा थोड़ा खून भी आने लगा और वो 1 हफ्ता बाद घर से उठकर कब्र में चला गया। अब रोना धोना शुरू हुआ, बैन होने लगे और सास बहू में इसी पर मुकाबला उठा कि देखें शोक कौन ज्यादा मनाता है। 5 रोज तो इसी तूफान में तुगियाने रही कि मीर साहब को खुद आकर समझाना पड़ा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सैलाब गम घटना शुरू हुआ। सास बहू को एक दूसरे के छुटकारा पाने और रिश्ते कराबत टूट जाने की गैर शऊरी तौर पर खुशी होने लगी कि दफतन चुन्नू की बीवी कबलज वक्त मरा हुआ बच्चा जन कर देवर के पास चली गई, यानी कि मर गई। बी जुलाहन को 4 छोटे-छोटे पोते पोतियों को संभालना पड़ा और मुन्नू की बेवा को इद्दत के अहकाम भूल जाने के मौके मिलने लगे। ऐसे ही एक मौके से चुन्नू गम भुलाने और जी बहलाने देवरानी के पास आ बैठा। खातिर तवाजो हुई और बातों का सिलसिला छिड़ गया। दर्द दिल बयां हुए, तन्हाइयों का जिक्र छिड़ा और इसके दूर करने के जराए पर भी गौर हुआ। बिलाखिर एक शबे इम्तिहान करार पाई। जब उसकी सुबह सुरखुरुई से हुई तो चुन्नू ने माँ से इसरार किया कि इस रिश्ते को निकाह के जरिए मुस्तहकम बना दे। वो बेटे को लेकर मौलवी साहब के पास पहुंची। वो देहात में रहने की वजह से शुरू की किताबें अब तक न भूले थे। उन्होंने इम्तिहान और उसके नताइज से वाकिफ होते ही कान पर हाथ रखा और निकाह के ममनू होने का फतवा फौरन सादर फरमा दिया। बड़ी भी देर तक एक वकील की तरह बहसती रही, पर जब मौलवी साहब अपने फैसले से न टले तो जलकर बेटे से बोली, चल ले घर चल, मांग में मेरे सामने सिंदूर भर देना, अब वो तेरी बीवी है, मैं खुश मेरा खुदा खुश। चुन्नू ने माँ का कहना किया, मांग में सिंदूर की चुटकी डाल दिया और अपने 4 बच्चों समेत उसी घर में मुंतकिल हो गया। 1 महीना बीता, 2 बीते, 3 महीने बीते, मगर 4th महीने चुन्नू की कमर उचक गई। अकड़ना बररना तन के चलना सब छूट गया। वो अब जरा झुक के चलने लगा। हमसिन मीर साहिबान में से एक साहब ताबीब थे, उनको दिखाया। इन्होंने माजूनी और गोलियां खिलाना शुरू की। दवाओं के जोर पर कुछ दिन और चला। बदकिस्मती से हकीम साहब एक रियासत में मुलाजिम होकर चले गए। बस चुन्नू की कमर कच्ची लकड़ी की तरह बोझ पड़ने से झुक गई। साथियों ने अफीम की सलाह दी, शुरू में तो काफी सुरूर आया, मगर अफ्यूम की खुशकी ने दबोचा। और बीच चुनिया बेगम मांगती हैं दूध, मक्खन, घी, मलाई, और ये चीजें 4 रुपए की कमाई में कहां नसीब। वो लगा घी से निकाल के हाथ फैलाने और पैसे मांगने, मगर इस पर जो कुछ मिलता भावे न समाता, और अफ्यूम की लत पड़ ही चुकी थी जो छूटती नहीं। उसने आहिस्ता आहिस्ता दिलो जिगर को छलनी किया और चुन्नू खां को इख्तलाज के दौरे पड़ने लगे और सूखी खांसी आने लगी। एक दिन जनवरी के महीने में जब बूंदा बांदी हो रही थी और ओले पड़ने वाले थे कि चुन्नू को इख्तलाज शुरू हो गया। ड्योढ़ी पर किसी काम के सिलसिले में हाजिर था, फौरन उठकर घर की तरफ भागा। रास्ते में ही कौंदा लपका और जान पड़ा उसी के सर पर बिजली गिरी। मुंह के बल जमीन पर आ रहा, संभल कर उठा, मगर दिल का ये हाल था कि मुंह से निकला पड़ता था। बेसाख्ता अरे माँ चीखता हुआ दौड़ा। रास्ता सुझाई न देता था, दम घुटा जा रहा था, मगर पांव पहिए की तरह लुढ़क रहे थे। घर की दहलीज में कदम रखा ही था दूसरा कड़का हुआ। वो ठोकर खाता, संभलता, फिसलता, लड़खड़ाता दालान वाले पलंग पर जाकर बहरी के नीचे से छूटे हुए कबूतर की तरह भद से गिर पड़ा और उसी तरह उसका हर अजू फड़कने लगा। बीवी अरे क्या हो गया लोगों, कहते हुए दौड़ी। चुन्नू ने बायां हाथ पहले दोनों हाथों से दबाते हुए कहा, अब मेरे बाद तुमको कौन खुश रखेगा, और हमेशा के लिए खामोश हो गया। चुन्नू की फातिहा के तीसरे दिन उसकी खुश न होने वाली बेवा गांव के एक जवान किसान के साथ कुंभ का मेला घूमने इलाहाबाद चली गई।
आशा करते हैं कि आपको ये सोच कास्ट बहुत पसंद आया। अगर कुछ कहना है इसके बारे में तो लिखकर बताइए हमें अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। सोच कास्ट ढूंढिए। अगर आपको अपनी सोच दुनिया को सुनानी हो तो सोच कास्ट करो। सोच कास्ट।